समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, आपको लेकर चलेंगे देश दुनिया की परिक्रमा पर और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अभिषेक। नमस्कार अभिषेक।
हेलो सरफिरोजी, हेलो गुड आफ्टरनून, यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट सरफिरोजी, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
जी अभिषेक, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर मोहम्मद मोइजू से आज भेंट करेंगे।
इंडियन एयरफोर्स शोकेसेस एरियल कैपेबिलिटीज इन अ मैजेस्टिक एयर शो एट द मरीना बीच इन चेन्नई एज पार्ट ऑफ इट्स 92nd एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस।
जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मंगलवार को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी।
At the 7 persons killed as fire breaks out in a shop cum residential building in Mumbai.
और इसराइल को हथियारों की आपूर्ति पर रोक के आह्वान के बाद फ्रांस और इसराइल के बीच विवाद शुरू हुआ।
And now, Sarfiroz, it's time for a segment, Dateline India, in which we'll take a look at the developments taking place at the national or the global level, and today we will talk about World Cerebral Palsy Day. Well, today is World Cerebral Palsy Day, which is a global observance that shines a spotlight on cerebral palsy and its impact on individuals, families and communities. This day is dedicated to improving the lives of the people living with cerebral palsy by bringing them together and ensuring that they have also have the same rights, access and opportunities as the rest of the world. And the theme for this year's World Cerebral Palsy Day is Uniquely CP, focuses on highlighting that an individual's disability is not the sole identity, but their distinct capabilities and strengths enable them to achieve their goals in life.
जी अभिषेक, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि किसी की भी कोई शारीरिक कमी उन्हें दूसरों से अलग नहीं बनाती, बल्कि उन कमियों के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल करने का जज्बा उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। और अब बात करें कि सेरेब्रल पॉल्सी है क्या, तो ये एक कंडीशन है जिसमें किसी इंसान का दिमाग उसके शरीर से ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इस बीमारी के लक्षण बहुत कम उम्र में दिखने लगते हैं और ये जीवन भर के लिए किसी के शरीर की गति और मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करती है। सेरेब्रल पॉल्सी की बीमारी बच्चों के दिमाग को हुए नुकसान या असामान्यता के कारण होती है। और अभिषेक, डॉक्टर्स बताते हैं कि इसमें नवजात शिशु के दिमाग तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और ऐसा आमतौर पर जन्म लेते समय या जन्म के तुरंत बाद शिशु को ठीक से सांस न आने के कारण होता है। इसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दिमाग को काफी नुकसान पहुंच सकता है। ये स्थिति बच्चों में जन्म से पहले, जन्म के दौरान या आमतौर पर 3 साल की उम्र तक विकसित होती है। और अभिषेक, आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जिन बच्चों का जन्म समय से पहले हो जाता है, यानी कि जिन बच्चों की प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, उनमें इस कंडीशन के डेवलप होने का ज्यादा खतरा होता है। नहीं अभिषेक, जब कोई भी कंडीशन होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसके आसपास बहुत सारी अफवाहें भी फैल जाती हैं। तो इनमें से कुछ हम यहां आज अपने श्रोताओं के लिए क्लियर करेंगे कि सेरेब्रल पॉल्सी कोई वंशानुगत बीमारी या कंडीशन नहीं है। इसके अलावा ये छूने से नहीं फैलती, संक्रामक नहीं है और इस बीमारी के और बढ़ने की संभावना नहीं होती। बात करें विश्व सेरेब्रल पॉल्सी डे के इतिहास की, तो इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई। 1948 में इस स्थिति से पीड़ित लोगों का इलाज करने में मदद करने और उन्हें धन मुहैया कराने के लिए यूनाइटेड सेरेब्रल पॉल्सी एसोसिएशन का गठन किया गया था। बाद में 2012 में सेरेब्रल पॉल्सी अलायंस ने 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।
Well, let's also talk about the aim of this day. Well, the primary aim of the day was to bring people living with cerebral palsy, their families, supporters and organizations together across the globe. Apart from that, the day is also observed every year to recognize the struggles and daily challenges of people living with cerebral palsy and find new ways to make their lives easier. And according to the Centers for Disorder Control and Prevention, there are four major types of cerebral palsy which are classified according to the impacted area on the brain. They are spastic cerebral palsy, which are the stiff muscles, dyskinetic cerebral palsy, uncontrollable movements, ataxic cerebral, poor balance and coordination, and mixed cerebral palsy, mixed to of more than one type of palsy mentioned, and the sarcoidosis after years of efforts by doctors, no material cure has been found, unfortunately, to treat cerebral palsy. However, some supportive treatments, medications, and surgery can help many individuals to improve the motor skills.
और अभिषेक, जब कोई कंडीशन होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसके लक्षण हर इंसान में अलग अलग होते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि सेरेब्रल पॉल्सी के कई टाइप होते हैं, लेकिन कुछ आम लक्षणों की बात की जाए तो इस स्थिति से पीड़ित लोगों को बैठने, करवट बदलने में परेशानी होती है और इससे पीड़ित बच्चे अक्सर देर से चलना सीखते हैं। इसके अलावा इस बीमारी के, इस कंडीशन के कुछ अन्य लक्षण हैं। ऐसे लोग जब भी कोई काम करते हैं तो वो काम करने में उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि इनका कॉग्निटिव सिस्टम कमजोर होता है, इनकी मांसपेशियां आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। इसके अलावा ऐसी कंडीशन से पीड़ित लोगों के एक या अधिक अंगों में कमजोरी होती है, किसी एक अंग में विशिष्ट कंपन हो सकती है, कई बार दौरे पड़ते हैं ऐसे लोगों को लिखने या चीजों को पकड़ने में कठिनाई होती है, इन्हें चीजें सीखने और समझने में दिक्कत होती है।
Yes, Sir Firozi, and Cerebral Palsy Day began with a small campaign called Change My World in 1 Minute, initiated by the Cerebral Palsy Alliance in Australia. The primary goal of this event was to gather ideas for technologies and products that could improve the lives of individuals with cerebral palsy. Over time, more organizations joined the movement to support research, studies and innovations aimed at enhancing the lives of cerebral palsy patients, regardless of the location, culture or economic status. And in India, the government has organized a series of awareness campaigns across the nation to mark World Cerebral Palsy to foster inclusivity and empower those living with the disorder.
जी अभिषेक, इसी क्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित लोगों की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रयास कर रहा है। विभाग के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान और क्षेत्रीय केंद्र जागरूकता बढ़ाने, रूढ़िवादिता को तोड़ने और विकार से पीड़ित व्यक्तियों की प्रतिभा को सामने लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यूनिकली सीपी थीम के माध्यम से इस दिन का उद्देश्य समाज को एक शक्तिशाली संदेश देना है कि सेरेब्रल पॉलिसी वाले व्यक्ति अपनी विशिष्ट क्षमताओं और शक्तियों के साथ जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
Yes, and cerebral palsy is often misunderstood, and those affected face numerous societal challenges. And the aim of this day is to break these stereotypes and work towards building an inclusive society where individuals with cerebral palsy are respected for their identity and talents. The 2024 theme is a positive step towards raising awareness that a person's disability is not their entire identity, and this year's World Cerebral Palsy Day will thus stand as a reminder to embrace and celebrate diversity, fostering a more inclusive world for everyone.
और अभिषेक, हमने अभी चर्चा की थी कि इस विकार का कोई भी स्थायी इलाज नहीं मिल पाया है, यानी कि इस कंडीशन से पीड़ित लोग कभी भी शारीरिक रूप से सामान्य नहीं हो सकते। ऐसे में इन्हें जीवन भर खास देखभाल की जरूरत रहती है। और एक और चीज जिसकी इन्हें जरूरत होती है वो है प्यार। अगर आप आज सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित किसी व्यक्ति से मिले तो ध्यान रखिए कि इन्हें उपचार के साथ प्यार की भी उतनी ही जरूरत है। उनके साथ हंसें, मुस्कुराएं, न कि उनका मजाक बनाएं। आपकी एक मुस्कुराहट उनका दिन बना सकती है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास जानकारी है।
विशाखापट्टनम रिसेंटली विटनेस्ड वैसाखी नृत्य उत्सव द 3-डे ऑल इंडिया क्लासिकल डांस फेस्टिवल। Numerous dancers from different dance forms participated in the festival. We have more from a Vishakhapatnam correspondent.
The 16th edition of Vaisakhi Nrityotsav, a 3-day all-India classical dance festival organized by the Madras Music and Dance Academy, concluded on 29 September at the Kala Bharati Auditorium in Visakhapatnam. This year featured a galaxy of dancers from different dance forms including Kuchipudi, Mohiniyattam and traditional folk dance. Along with the established artists, the local talent was also given an opportunity to perform under the title talent from the City of Destiny. Renowned Kuchipudi dance expert Madhav Peddimurthy, along with his troupe from Tamil Nadu, delivered a scholarly Kuchipudi dance performance. Rupa Shri Mohapatra's group from Odisha followed with a traditional folk dance from the region, captivating the spectators. The final performance, a Mohiniyattam dance by Chitra Sukumaran from Kerala, left a long-lasting impression on the audience. During the event, Madhav Peddimurthy was honored with the National Excellence Award 2024 for his contribution to Kuchipudi dance. Naidi Mirot Naik, a renowned lightning management expert from Odisha, specializing in traditional performing arts, received the Vaisakhi Excellence Award. Chitra Sukumaran, known for Mohiniyattam, also received the Vaisakhi Excellence Award. This dance festival was held under the guidance of founder president of Natraj Music and Dance Academy, B.R. Vikram Kumar, received appreciation for conducting the festival for 16 years independently, acknowledging his efforts in promoting classical dance. The word Vaisakhi in Vaisakhi Nrityotsav reflects the glory of Vishakha, Vaishakeshwar and Vaishakeshwari. During Vaisakhi Nrityotsav, Visakhapatnam will grace the festival and the god Vaishakeshwara and goddess Vaishakeshwari shall bless the celebrations of the grand classical dance festival Vaisakhi Nrityotsav in every September month of the year. The festival ended with awards given to the distinguished artists, marking another edition of successful Vaisakhi Nrityotsav. This is Satyanarayana for Parikrama from Visakhapatnam.
और अब आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़, जहां धमतरी जिले में जल जगार महोत्सव चल रहा है। दो दिनों का ये महोत्सव पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय गंगरेल बांध परिसर में कल से शुरू हुआ है। सम्मेलन में यूनिसेफ, जापान, श्रीलंका के अलावा देश के अनेक जल और पर्यावरणविद भाग ले रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला।
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में चल रहे जल जगार महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश विदेश के नीति निर्माता, पर्यावरणविद, विशेषज्ञ और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि जल संचय और जल संरक्षण पर संवाद कर रहे हैं। इन विशेषज्ञों ने जल संचय और जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए अपने अपने क्षेत्रों के सफल कार्यों की कहानियां साझा की। इस दौरान जल संरक्षण के प्रभावी उपायों पर गहनता से विचार विमर्श करने के साथ ही उन्हें धरातल पर उतारने की कार्ययोजना भी तय की गई। सम्मेलन को प्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्मश्री पोपटलाल पवार, श्याम सुंदर पालीवाल और उमाशंकर पांडे तथा अर्थशास्त्री और शहरी विकास विशेषज्ञ प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की अपर सचिव अर्चना वर्मा ने संबोधित किया। इस जल जगार महोत्सव के तहत पंडित रविशंकर जलाशय में कायाकिंग, स्विमिंग, बनाना राइड, फ्री स्टाइल स्विमिंग और रिवर क्रॉसिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। जल जगार महोत्सव में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें खादी ग्रामोद्योग सहित अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। महोत्सव के तहत आयोजित कार्निवाल में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेकर पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश दिया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
The inauguration of the Param Rudra supercomputers, the giant meter radio telescope GMRT in Pune, along with Delhi and Kolkata by Prime Minister Narendra Modi, recently are set to revolutionize research across multiple fields, and the GMRT Pune will use this computer to study about the mysterious fast radio bursts, that is FRBs. We have more from a Pune correspondent.
The giant meter radio telescope in Pune will use the supercomputer to explore fast radio bursts, that is FRBs, and other astronomical phenomena, advancing our understanding of the universe. Fast radio bursts are intense blasts of radio waves that can emit as much energy as the sun puts out in 3 days, but in just thousands of a second. Much about these events remains mysterious. FRBs come from all over the sky and have frequencies of around 1400 hertz, though some have been detected with frequencies as low as 400 to 800 hertz. Some scientists estimate that 10,000 FRBs could occur at random points in the sky over Earth each day. However, most FRBs last just milliseconds, and by the time their energy has reached Earth, it is 1,000 times weaker than a mobile phone signal would be if it were emitted from the moon and detected on Earth. Because these signals are so weak and so brief, FRBs are incredibly difficult to spot. As such, much about FRBs remains unknown. Scientists don't know exactly what causes FRBs. The Tarangudra supercomputer's enhanced computational power will help the GMRT process large amounts of data more efficiently and precisely. This will improve the telescope's ability to detect low-frequency signals from space. The Tarangudra supercomputer's advanced capabilities will allow astronomers to perform more complex data analysis. This could lead to breakthroughs in understanding the origins of the universe, black holes, and the interstellar medium. The GMRT's upgraded capabilities will attract collaborations from scientists worldwide, fostering international research partnerships in radio astronomy. By developing these supercomputers indigenously, India is taking a significant step towards technological self-reliance. This aligns with the country's broader goals of becoming a global hub for scientific innovation and technological advancement.
अब चल रहे हैं रांची, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
केंद्र सरकार विभिन्न समुदाय और वर्गों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए झारखंड के हजारीबाग से लगभग 80,000 करोड़ रुपए की लागत से 550 जिलों के करीब 65,000 आदिवासी बहुल गांवों के विकास के उद्देश्य से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया।
हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित करते हुए कहा कि यहां के आदिवासी समुदाय को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार कृतसंकल्पित है।
बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। अगले वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएंगे। उनके नाम पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू हुआ है। इस योजना का फोकस है कि जिन भी आदिवासी भाई बहनों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें हर लाभ से जोड़ा जाए।
प्रधानमंत्री ने बताया कि झारखंड के आदिवासी युवाओं के कौशल विकास व रोजगार के लिए भी यह धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान मददगार साबित होगी।
यही नहीं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी युवाओं के कौशल विकास पर भी फोकस होगा। हमारे जनजातीय युवा स्किल्ड हो, उन्हें रोजगार के नए नए अवसर मिले, ये योजना इसमें बहुत बड़ी मदद करेगी।
मूलभूत सुविधाओं की राह देखते झारखंड के जनजातीय समाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित यह योजना उम्मीद की किरण साबित होगी। परिक्रमा के लिए रांची से मैं कामिनी।
और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद जस्सर फरोजी।
सरफरोज जी, आज का शाम जो है पूरी की पूरी क्रिकेट के नाम है। इस समय महिला क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का ये मैच शारजा में खेला जा रहा है। स्कोर की बात करें तो 16 ओवर में पाकिस्तान ने 7 विकेट खोकर 75 रन बना लिए हैं और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। और आज शाम ही भारत और बांग्लादेश के बीच 3 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच ग्वालियर में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल इस मैच में नहीं खेलेंगे। हालांकि इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पराजित किया था। वहीं हॉकी इंडिया ने मलेशिया में सुल्तान जौहर कप के लिए आज 18 सदस्यीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा की। पीआर श्रीजेश को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और चलते चलते मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, जहां से लगातार पल पल की हम जानकारी दे रहे हैं। अब वापस चलते हैं अभिषेक और सरफिरोजी के पास।
धन्यवाद नवीन।
Yes, and now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
October 6th is important in the history of the freedom movement as the death anniversaries of three freedom fighters fall on this date. They are Paramasivan Subbarayan, Baba Saheb Bhosle and Bhojaram Kolhatkar. Besides being a freedom fighter, Paramasivan Subbarayan was also a politician, diplomat and the Chief Minister of Madras Presidency. He was born on the 11th of September 1889 in Tamil Nadu. After graduating from Presidency College Madras, he pursued his MA at the University of Oxford. Later, he obtained an LLB from the University of London and an LLD from Trinity College, Dublin. Subbarayan worked as an advocate in the Madras High Court. He started his political career as a member of the Justice Party, which he quit later and was supported as an independent candidate by the Swarajya Party.
In 1922, he was nominated to the Madras Legislative Council. He served as the Chief Minister of Madras Presidency from 1926 to 1930.
In 1933, he joined the Indian National Congress. In 1937, when the Congress swept to power in the Madras Presidency, Subbarayan was appointed as the Law Minister under C. Rajagopalachari's Chief Ministership. Subbarayan was imprisoned for participating in the Quit India movement. He was elected to the Constituent Assembly from Madras and made important contributions to the debates on adult franchise, civil services, rule of law and the official language.
From 1949 to 1951, Subbarayan served as Independent India's first ambassador to Indonesia. Subbarayan also served as a member of the Rajya Sabha from 1954 to 1957. He was elected to the Lok Sabha from Tiruchangod in 1957 and served as a member till 1962. He was again elected to the Lok Sabha in 1962, but was instead appointed as the governor of Maharashtra. He passed away on 6th October 1962. In 1989, during his birth centenary, India Post issued a stamp to honor him.
On this day in 2007, a veteran freedom fighter from Maharashtra, Baba Saheb Bhosle, passed away at the age of 86. Bhosle participated in the Satyagraha in 1939 while he was a student. He was imprisoned for 1.5 years in 1941-42. Bhosle was born on January 15, 1921 at Satara in western Maharashtra. He was a law graduate and completed Bar at Law in 1951 and practiced for 10 years in Satara. In 1980, he was elected to the Maharashtra Assembly and later handled various important portfolios. Former President Pratibha Patil was a member of Bhosle's cabinet during his tenure as the Chief Minister of Maharashtra in 1982-83.
Bhosle started the scheme of providing free education to girl students till 10th class. He started the Aurangabad bench at the Bombay High Court and also created Gadchiroli district. Bhosle was instrumental in initiating welfare measures for freedom fighters and started a pension scheme for them.
On this day in 1942, freedom fighter Bhojiram Kolita made supreme sacrifice for the motherland. He was an active participant in the Quit India movement. On 21st September 1942, he took part in a procession at Tezpur organized to mourn the death of those who died in the Dhekiajuli firing. When the procession arrived at the compound of a church, the participants were surrounded from all sides by the police armed with lathis and guns. The police gave them 10 minutes to disperse.
No sooner had the crowd begun moving out, a very heavy lathi charge was made on them from behind. Many received serious beatings. Bhojiram Kolita, aged 65, was badly injured. 15 days after this incident, he succumbed to his injuries on 6th October 1942.
और अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिवस है. श्रोताओं आज सबसे पहले याद कर रही हैं अरविंद त्रिवेदी को जिनकी आज पुण्यतिथि है. ये भारतीय सिनेमा में छोटे पर्दे के प्रसिद्ध कलाकार थे. दूरदर्शन पर आने वाले प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में उन्होंने लंकापति रावण का किरदार निभाया था. इसके अलावा इन्होंने 40 वर्षों तक गुजराती भाषा की लगभग 300 हिंदी फिल्मों में भी काम किया. आपको सुनाने जा रहे हैं उनके धारावाहिक रामायण का एक डायलॉग.
उस वनवासी राम का बाण जब कमान पर चढ़ता है तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देता है और जब धनुष से छूटता है तब सहस्त्रमुख विष्णु के समान हो जाता है और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समान प्रलयंकारी बन जाता है. नाना जी हमने इंद्र के पुलिश शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा परंतु उनके और राम के बाणों में अगाध भेद है. राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं कब निशाने पर लगते हैं देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती.
Yes, and Vinod Khanna was born on this day in 1946. He's an actor, film producer and politician who's best known for his work in Hindi films, while also being a notable spiritual seeker. In Bollywood, he was the recipient of 2 Filmfare Awards, and Khanna was considered a style and fashion icon. And later in his career, Khanna played several memorable roles as a father in blockbuster movies such as Wanted 2009, Dabang 2010, and Dabang 2 2012. Let's listen in to a hit song from one of his movies.
जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा वो हम नवाज़ जब कोई बात बिगड़ जाए.
और 1999 में विनोद खन्ना को फिल्मों में 30 वर्ष से भी ज्यादा समय के योगदान के लिए फिल्मफेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया. 140 से भी अधिक फिल्मों में विविध किरदार निभाने वाले विनोद खन्ना को सबसे पहले 1974 में हाथ की सफाई फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला. उसी साल उन्हें नेशनल यूथ फिल्म अवार्ड भी मिला. और आज ही पुण्यतिथि है वामन पोतदार की. ये साहित्यकार एवं समाजसेवी थे. हिंदी को महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी भाषा बनाने का श्रेय इन्हें ही जाता है. साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें 1967 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया.
रॉबर्टो अल्फोंसो फेरल और बॉबी फेरल वाज बोर्न ऑन द सेम 1949. Peruvian dancer, singer and DJ. He was a member of the 1970s R&B group Boney M. Let's listen in to Sid Trout, Rivers of Babylon, and it's from the album Night Flight to Venus.
By the rivers of Babylon, there we sat down.
Yes, and Charlie Dua Jean Wu Heng, known as Lee Corbusier, was born in the same 1887. He was a Swiss French architect, designer, painter, urban planner and writer, who was one of the pioneers of what is now regarded as modern architecture. And Sarfarozi also designed the city of Chandigarh in India.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की.
नमस्कार.